आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूं SBS हिंदी सेवा के लिए नई दिल्ली से मनन कुमार। पेश हैं भारत के मुख्य समाचार। रफाल लड़ाकू जहाज सौदे में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों पर फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक द्वारा जांच बैठाने पर भारत में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिर से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस विषय में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा,
फ्रेंड्स, द स्वीटहार्ट डील एंड रोल ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन नाउ एक्सपोज्ड। विल द प्राइम मिनिस्टर लाइक द फ्रेंच नाउ आंसर टू द नेशन एंड टेल व्हेन विल द प्राइम मिनिस्टर सबमिट हिज गवर्नमेंट टू ए जेपीसी प्रोब इनटू द रफेल स्कैम।
और अब सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का इस बारे में क्या कहना है।
अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है रफाल को लेकर। किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है।
ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के एक साल के भीतर ही यूपीए गठबंधन सरकार द्वारा किए गए 126 रफाल जहाज़ों के सौदे को रद्द कर 36 जहाज़ों का नया सौदा किया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब केवल 8 महीने ही शेष बचे हैं, जिसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज़ होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में 75 में से 67 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम रखने का दावा पेश किया है। हालांकि विरोधी दलों ने इन नतीजों को आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखने को राजनीतिक भूल कहा है। इसी संदर्भ में आने वाले चुनावों में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के दावे को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी।
ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो संघ की ही एक शाखा है, के समारोह में कहा कि लोगों को पूजा पद्धति के आधार पर बांटना अनुचित है और हिंदू मुस्लिम टकराव को सिर्फ बातचीत से सुलझाया जा सकता है, न कि कलह द्वारा। भागवत ने कहा,
हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगे, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है, उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? वो कैसे अलग हो गए?
17वें जस्टिस पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर सीरीज में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना के हाल में दिए गए भाषण को भारत के राजनीतिक, बौद्धिक और सामाजिक हलकों में बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस रमना अपने बेबाक विचारों और नागरिक हितों की रक्षा करने वाले फैसलों के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के जरिए किसी को बदलने का अधिकार निर्वाचितों के अत्याचार के खिलाफ गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव, आलोचना और विरोध, ये सभी लोकतंत्र का अंग हैं, लेकिन इससे उत्पीड़न से मुक्ति की गारंटी नहीं मिलती। उन्होंने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना संकट काल में लोगों पर अधिक दबाव बना है। चीफ जस्टिस रमना ने कहा,
well, need not be a guarantee against tyranny. The idea that people are the ultimate sovereign is also to be found in notion of human dignity and autonomy. A public discourse that is both reasoned and reasonable is to be seen as an inherent aspect of human dignity and hence essential to a properly functioning democracy. As Professor Julie Stone observed in his book, The Province of Law, elections, day-to-day political discourses, criticisms, and voicing of protest is integral to the democratic process.
किसानों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर पैदा हुई खाई पटने में नहीं आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान कि वो सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहते हैं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए और भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए भी तैयार है को किसानों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। अपने रुख को और कड़ा करते हुए किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि यदि किसी कंपनी के बदले कोई पार्टी सरकार चला रही होती तो अब तक फैसला हो जाता।
सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया छोटे छोटे बालक कह रहे थे, अब की बार मोदी सरकार 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख गया नहीं, मोदी सरकार बता लेगा। और सबको बता के मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी।
भारत में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 43,071 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। प्रतिदिन संक्रमण की दर घटकर 2.34 रह गई है और कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.09% पहुँच गई है। किंतु पिछली गलतियों को देखते हुए राज्य इस बार बहुत सावधानी बरत रहे हैं और धीरे धीरे गतिविधियों को खोल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपने ताज़ा निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस, बैंकेट हॉल, राजनीतिक और सामाजिक सभाएं, तरणताल, विद्यालय, महाविद्यालय, मनोरंजन उद्यान इत्यादि को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलते हुए इंग्लैंड की ही शार्लट एडवर्ड्स के 10,273 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। राज 7,304 रनों के साथ दुनिया की एकमात्र महिला बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 6,000 से अधिक रन बनाए हैं। अपने प्रदर्शन के बारे में राज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी।
I think the way things have gone, it was not an easy journey. It had its own trials and challenges. I've always believed that the trials always have a purpose, and there were times when I wanted to give up for various reasons, but something kept going, and here I am, 22 years of international cricket, but the hunger to score runs for India has never sort of dried up. I am still very passionate to go out there and score runs, to be there in the middle and win games for India. I know that there's still room for improvement in terms of my batting. That is something I'm working, because I know I have few months run up to the World Cup.
आज के समाचारों में बस इतना ही। SBS हिंदी सेवा से मनन कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।